भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ अष्टम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 19। यं धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टं गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिषो रात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम्। सद्दात यम जिस भगवान को धर्म कामार्थ विमुक्ति कामः ऐसे व्यक्ति जो धर्म अर्थ काम तथा मुख्य इन चारों की कामना करते हैं, भजंतः पूजा द्वारा इष्टम लक्ष्य को गति मापनवंती अपने गति को प्राप्त कर सकते हैं। किम चाशिष फिर अन्य आशीर्वाद की क्या कहा जाए। रात्यपि प्रदान करता है, देहम अव्ययम अव्यय शरीर करो तुम्हें मुझे आशीर्वाद दें। अभद्र दया अत्यधिक दयालु, विमोक्षणम संकट से मुख्य। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान की पूजा करने पर जो लोग धर्म अर्थ काम तथा मुख्य इन चारों में रुचि रखते हैं वे उनसे अपनी इच्छा अनुसार इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर अन्य आशीर्वादों के विषय में क्या कहा जा सकता है। कभी कभी भगवान ऐसे महत्वाकांक्षी पूजकों को आध्यात्मिक शरीर भी प्रदान करते हैं। जो भगवान असीम कृपालु है वह मुझे वर्तमान संकट से तथा भौतिकवादी जीवन शैली से मुक्ति का आशीर्वाद दें। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में कुछ लोग अकामी होते हैं, कुछ सकामी, कुछ धर्म अर्थ काम एवं अंततः मुख्य की कामना करते हैं। अकाम सर्व काम व मुख्य काम उदारधि त्रिवेण भक्ति योगेन यजत पुरुषम परम। यह संस्तुति की गई है कि मनुष्य को चाहे जो भी स्थिति हो, चाहे वह भौतिक लाभ चाहता हो या न चाहता हो या अंततः मुख्य चाहता हो, उसे भगवान की श्रद्धा पूर्वक भक्ति करनी चाहिए, तभी उसे मनवांछित वस्तु प्राप्त होगी। ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम सथैव भजामि अहम्। भगवान आदान प्रदान करते हैं, यहाँ तक कि एक सामान्य जीव भी जो चाहता है उसे कृष्ण प्रदान करते हैं। कृष्ण हरेक के हृदय में स्थित रहते हैं और जीव को मनवांछित वस्तु देते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि जन्तरूढानि मायया। हे अर्जुन, भगवान सबके हृदय में आसीन है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर आरूढ़ सारे जीवों को घुमाते रहते हैं। भगवान हरेक को अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति का अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि ध्रुव महाराज जैसे भक्त भी अपने पिता के साम्राज्य से अधिक बड़े साम्राज्य का वर चाहते थे। यद्यपि इन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ, किंतु उन्हें साम्राज्य भी प्राप्त हुआ, क्योंकि जो भी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है उसे भगवान निराश नहीं करते। क्योंकि गजेंद्र ने वर्तमान संकट से, या यूं कहे कि भौतिकवादी जीवन के वर्तमान संकट से मुक्त होने के लिए शरण ग्रहण की थी, तो भगवान ओम अज्ञानमतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साक्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखानितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज की गजेंद्र की जो स्तुति, इसमें अंत में नमस्कार नहीं किया उन्होंने, अब तक तो नमस्कार करते आ रहे थे। गजेंद्र भी हो, हम लोग भी क्यों ना हो, किससे काम निपटाना है, किससे सहायता लेना है, पहले तो उसका प्रशंसा करना पड़ेगा, मालिश करना पड़ेगा, नमस्कार वगैरह करना पड़ेगा बहुत सारे, बाद में फिर अपना आशय रखना पड़ेगा कि भाई ये है ना। हम कुछ भी दरखास्त एप्लीकेशन लिखते हैं ही साचा ही होता ना पहले महाशय वो अपने जो सब करके फिर सब्जेक्ट मैटर डालना है। तो बेचारे गजेंद्र जो इतने सालों से दुख पा रहे थे, डायरेक्ट दुख से क्या कहें, अब जब बुद्धि ठिकाने में आया, समझ गए कि भगवान ही शरणागत वत्सल है, उन्हीं के सहायता से कुछ होगा, और उनके इस स्थिति में उनके पहले जन्म के जो थोड़े बहुत प्रैक्टिस किए थे, यही भगवान की कृपा है कि अगर हम सचमुच भगवान कुछ भजन किए होंगे तो अति विपद असहाय स्थिति में वो याद दिला देते। भगवान कहते हैं कि सभी के हृदय में बैठ कर तुम्हें ये दो काम तो करता हूं, है ना, याद दिलाता हूं और बुलाता हूं, तो जब जहां जरूरत पड़ता है कर देते हैं। तो गजेंद्र को दे दिए, तो गजेंद्र सारे भगवान की महिमा को गान करने लगे, प्रणाम करने लगे, और अंत में, अंत तो नहीं, वो तो लगभग 30 श्लोक उनका है स्तुति का, अभी तो आधा ही है, अब आपने जो इच्छा है इसको पेश करते हैं। अब इच्छा पेश करने के लिए डायरेक्ट बोल देंगे, नहीं, अब तो प्रणाम करते करता है खूब सम्मान देते, नमः ईश्वराय, ज्ञान घनाय, क्या क्या सब कहता है। तब बोलते हैं देखिए मैं ऐसे नहीं मानता हूं, मेरा इच्छा नहीं, आप सबको देखते हैं, यम क्रोध यम धर्म कामार्थ विमुक्त कामा, जो जो अपना नाम बता दो, जो जो जिस जिस कार्य के लिए आप मांगे सबका इच्छा तो पूरा किया आपने, कोई धर्म के लिए, कोई काम के लिए, कोई अर्थ के लिए, कोई मुख्य के लिए, जिस जिसके लिए आपके कोई शरण में गया, आपकी स्तुति, आपकी पूजा किया, सबका काम तो पूरा किए ना, नहीं है? तो ये उदाहरण देते कि आप सब करते हैं तो हमारा भी करेंगे, डायरेक्ट अपना नहीं बताते, ये तरीका है। गजेंद्र वेरी सिविलाइज तो तरीका बताते हैं, आप सभी को दिए हैं अपना अपना धर्म अर्थ काम मुक्ति सबको दिए हैं। भजनते इष्टांग गतिमापनवंती, जो इसके इच्छा से जिस प्रकार इच्छा लेकर के आपको भजन किया, उनके इष्ट उनके लक्ष्य को आपने प्राप्त करा दिए उनको। तो किंचा शिशोर अत्यपि देहमप्य, फिर दूसरा आशीर्वाद को क्या चाहिए, जो सभी के इच्छा अनुरूप आप और प्रदान करते हैं, और दूसरा आशीर्वाद हम थोड़ी कुछ मांगते हैं, हम इनमें से कुछ मांगते हैं है ना। अब धर्म अर्थ काम तभी मिलेगा, शरीर रहे तभी तक धर्म अर्थ काम का मतलब है ना। अब तो शरीर मरने वाले एक सेकंड दो सेकंड प्राण जाएगा, अर्थ क्या करो, धर्म क्या करो, काम भोग क्या, अभी तो एक ही रहा मोक्ष, तो ये काम करवा दीजिए प्लीज। इसलिए विमुक्षण विशेष मुख्य चाहता हूं मैंने इनमें से, और दूसरा आशीष क्या चाहूं है, करो तू मे दभ्र दयो अदभ्र दयो, आप तो इतने दयालु, आप समझ लेते हैं, एप्लीकेशन फॉरवर्ड होने से पहले से आप समझ लेते हैं क्या चाहता है, तो आप उसको दे देते हैं। तो अदभ्र दया साधारण दया नहीं, तो विमोक्षणम, विमोक्षणम केवल अभी ये जो कष्ट भोग रहा हूं मैंने, कितने यंत्रणा कई सालों से हो रहा है, पकड़ रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ये तो है असह्य यंत्रणा शारीरिक, लेकिन फिर भी ये शरीर लेकर के आकर हाथी शरीर, ये हाथी शरीर से भी इस दुनिया के झंझट से भी ये सारे से मुक्ति करो, इसलिए विमोक्षणम, मुख्यणम नहीं कहे, विशेष मुख्य के विशेषता ये देकर कहते हैं कि केवल इस शरीर से नहीं, और अगर आगे भी कोई ऐसे शरीर लिए संसार में इस प्रकार कष्ट से भी नहीं, हर प्रकार से मुख्य चाहता हूं मैंने विमोक्षणम, इस आशा लेकर के गजेंद्र फिर भगवान की स्तुति करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहते हैं कि संसार में चराचर जगत में जितने लोग हैं, कोई ऐसे छाती ठोक कर बोल नहीं सकता मैं कि निष्काम हूं, कामी तो सभी है, अकाम अकाम भी एक कामना ही है मैं कुछ नहीं चाहता हूं, ये भी तो चाह है ना सर्व काम सब चाहने वाले भी होते, और कुछ मुख्य काम चाहने वाले भी होते, बोलते इससे तो छूट नहीं सकता, कामाहीन हो ही नहीं सकते। तो इसलिए रूप गोस्वामी ने भक्ति के जब डेफिनेशन दिए, बड़े विचार बड़े ढंग से दिए कि अन्य अभिलाषा शून्य, ये नहीं कहते सारा अभिलाष शून्य, कई कई संप्रदाय में कहते हैं कि आसार विनाश में दुख विनाश, आशा विनाश हो ही नहीं सकता बाबा, इट नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए रूप गोस्वामी बोले ना आशा का विनाश हो ही नहीं सकता, अन्य आशा का विनाश, अन्य अभिलाषा शून्य, अन्य शब्द जहां उपयोग किया जाता है उसका मतलब है कुछ तो होगा उसको छोड़ करके दूसरा नहीं, यही है ना, अन्य के शब्द आने का मतलब यही होता है कुछ तो होगा। तो कुछ क्या है, केवल भगवत सेवा की इच्छा, भगवत भक्त संग की इच्छा, इसी प्रकार जो अनुकूल अभिलाष ये होना ही चाहिए, हम लोग के काट पत्र का शांत नहीं है, तो अनुकूल सेवा भावना छोड़ करके ये अभिलाष को छोड़कर और कुछ अभिलाष नहीं होना चाहिए। तो चाहे कोई किसी भी प्रकार के आशा रहे, दुनिया भर के आशा करे, सब आशा छोड़ करके आपके सेवा के आशा करे या मुख्य कामना करे, कहा गया तीव्रेण भक्ति योगेण यद्यपि पुरुषो परम, बाकी किसका पास न जा करके आप ही परम पुरुष का तीव्र भाव से भक्ति किया जाए तो प्राप्त होता है, सब कुछ प्राप्त होता है। बोले कोई इसे प्राप्त होता है, भक्ति कंस मिलिया तुम्हें प्रमाण, प्रमाण 5 साल के बच्चा था ध्रुव महाराज, 5 साल का लड़का था, उनको उनके मां ने सिखा दी कि करना चाहिए। एक्चुअली सचमुच ऐसी कोई मां नहीं है जगत में, कोई अपने छोटे बेटा क्या 50 साल के बेटा को नहीं छोड़ना चाहेंगे, 5 साल के बेटा को तो संभव ही नहीं छोड़ देंगे। लेकिन वो बिचारी इसी दुखी में इतनी निराश अवस्था में थी, उनका पास कोई उपाय ही नहीं था। दोनों मां और बेटा रोते रोते मां ने बोला कि अब हम तो कुछ कर ही नहीं सकती, तो सही में भगवान की शरण में जाना चाहिए। वो भी क्षत्रिय कुमारी थी, क्षत्रिय स्त्री थी, और बेटा भी उनका प्योर ब्रीड के क्षत्रिय थे, तो उन्होंने बिल्कुल उनका अंदर जो स्वभाव था बिल्कुल जिद ले लिए ये करना ही है। और इस 5 साल की अवस्था में घर छोड़ के जंगल निकल गया। यस, जा करके अब जब निकले जिद्दी करके नारद जी दौड़ करके आए उनके पास, उनको आकर के जो उनका आवश्यकता था टेस्ट करके सब दिए, और उन्होंने जा करके 6 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, 5 महीना पूरा करके 6ठे महीना में भगवान को सामने हाजिर करा दी। यस, 5 साल की बालक ओनली इन 5+ मंथ भगवान को सामने हाजिर कर दिया। ये सब पढ़कर के मन में पूछा तो जो कर सकता है कोई, हम क्यों नहीं कर सकते, कुछ बहुत तो कर सकते हैं। इसलिए बड़े प्रेरणादायक भागवत तो उन्होंने ऐसे कहीं कहीं टीकाकर को ऐसे मत है कि ध्रुव और प्रह्लाद दो बाल भक्त हैं, प्रसिद्ध हैं, दोनों ही उम्र सेम उम्र में भक्ति शुरू किए थे। लगभग भक्ति शुरू प्रह्लाद महाराज तो बहुत पहले से किए थे, सब गर्भ में थे तभी से शुरू कर लिए थे, तो इसलिए पहले से शुद्ध हो चुके थे। और दोनों ने ही 5 साल में भगवान प्रकट करा दिए। भले कोई शत्रुभुज अब हिरण्यगर्भ के रूप में प्रकट कराया अपने सामने, और कोई नरसिंह रूप में प्रकट कराया। नरसिंह जो कि ज्यादा पब्लिसिटी है ना, नहीं उनके ये ध्रुव महाराज जिसको कहे जिसका पब्लिसिटी नहीं कोई देखे नहीं थे, फटाफट नहीं लिए थे उनका, तो जंगल में थे। नरसिंह देव तो बिल्कुल बीच राजसभा में थे, सबको मारपीट करके ऊपर से नीचे सब उनका लिए होंगे फोटो एडवर्टाइज खूब हुआ उनका, नरसिंह देव का। बोलते दोनों भगवान आकर के दोनों बाल भक्त के समक्ष प्रेजेंट हुए थे, लेकिन एक ने भी दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति करना चाहा ध्रुव ने, और लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे बेचारे, उनको भगवान ने शंख स्पर्श कर दिए गंध स्थल में, स्तुति की उनको, उनको इस प्रकार कृपा किए, उनको तो केवल इतना कृपा किए। लेकिन प्रहलाद वही उसी उम्र के थे, उनके सामने भगवान प्रकट हुए, अरे प्रकट क्या हुए, उनको कुछ छुए में नहीं, उनको तो हाथ दोनों हाथ में उठा करके उनके हाथ से जबरदस्ती माला पहन करके उनको सूंघ गए, चाट गए, गोद में निकाले नहीं, उनको गोद से निकाले नहीं। कितने प्रेम, कितने प्रेम, केवल स्पर्श मात्र नहीं, उनको हाथ में लेकर के गोद में उनको पूरे शरीर को सूंघना, और सिंह था ना, क्या कर सकता, सिंह चुमा नहीं दे सकता, चुम्बन आज नहीं कर सकता, वो चाट सकता है, सूंघ सकता है, सर उनके हिसाब से वो किए। तो इतने प्रेम अतिरेक हो गया, बोले क्यों, क्योंकि निष्काम था। ध्रुव महाराज प्रोजेक्ट रखकर गए थे कि मैं मेरे दादा परदादा से बड़ा साम्राज्य चाहिए मुझे, बोले इस प्रकार कोई कामना करके कुछ अभिलाषा लेकर के ठाकुर जी के पास जाए, खूब प्रयास करे, तपस करे, भगवान आते हैं और देते। यद्यपि ध्रुव महाराज का बुद्धि सुधर गया था, 5 महीने में बोले नहीं 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 प्रभु, एक्सक्यूज मी, मैं तो कांच के टुकड़ा ढूंढने के लिए आया था, अभी हीरा मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और बोले नहीं, मेरा रिकॉर्ड खराब होगा, आपका रिकॉर्ड खराब होगा और क्या। बोले देखो ये बेचारा बच्चा घर से रो रो कर मांगने निकला था, उनको चाहिए चीज इसलिए मांग करके घर से रो रो कर निकला था, और आप उसको बहला दिए, दे नहीं मुझे। बोले आपके पास कोई नहीं आएगा, लोग ऐसे सोचेंगे बोले आप उनके पास कौन जाएंगे, तो बहला देते हैं, छोटे बच्चे को भी नहीं दिए, उनको देने के सकते था, उनको दे सकते थे लेकिन दिए नहीं, हाँ रूप भूख गुण दिखाकर बहला दिए उसको। बोले इसलिए मेरे पास और पार्टी के लोग कम हो जाएंगे, तो इसलिए मैं तो ऐसा मत समझो कि आप शुद्ध हो गया, नहीं लगे नहीं, मुझे तो दूंगा बाद में, आपका काम ही होगा तो दे। तो ध्रुव महाराज को दिए, जो चाहता था अद्भुत लोग उनको दिए, बैकुंठ के एक्सटेंशन काउंटर खोल दिए और हमको वहां बैठा दिया ध्रुव लोग। तो लेकिन प्रहलाद को बहुत बोले कुछ मांगो कुछ लो, प्रहलाद बोले ठाकुर जी हम बनिया तो है नहीं, बिजनेस करेंगे आपके साथ, लेन देन के चक्कर नहीं, हमको प्रोजेक्ट पहले से नहीं था हमारे पास। बोले ध्रुव भले से लेकर आए थे, हमारा तो इसे पहले से नहीं था, पहले से निष्काम है अकाम, अभी भी आपका सामने कहते नहीं चाहिए। ऐसे भक्त अगर भगवान के सामने कोई आया तो निष्काम, भगवान उनको अपने हाथ से अपने गला तक उठा लेते हैं, कंधे में बैठा करके इतने प्रेम करते हैं, इतने स्नेह करते हैं कि कोई सोच समझ नहीं सकता। कोई मनुष्य अब तक भले किसी से प्रेम कर सकता, इसलिए भगवान सिंह बनकर आए थे। भगवान क्या ऊपर हाफ मनुष्य नीचे हाफ लायन बन सकते, तो उनके फर्क पड़ता है? मारने के लिए तो कैसे मार सकते थे, स्पर्श करके मार सकते थे, किसी को कोई जरूरी थोड़ी था सिंह बनकर मारे। लेकिन नहीं, सिंह इसलिए बने, जानते किसलिए बने भाई, उनको को फर्स्ट हाफ अपर हाफ लोअर हाफ कुछ भी चेंज कर सकते थे। ऐसा क्योंकि अपर हाफ लायन बने लोअर हाफ मैन बने, यस गुस्सा इतने स्टार्क था उनका, प्रहलाद को जितने जितने कष्ट दिए थे, ओ बोलते हैं कि प्रहलाद को जो कष्ट दिए तो दौड़कर क्यों आकर रुका है, आते थे दौड़ करके, प्रहलाद बोलते थे नो, भक्त ही नहीं चाहता था उनका हेल्प, बोले ना मैं सहल कर लूंगा। अरे हद कर दिया यार, मैं दौड़ कर आया था, मैं नहीं चाहिए, आप क्यों कष्ट कर, मैं सहन कर लूंगा, मैं सहन कर लूंगा। प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव तो प्रहलाद जी के हद देख के तुम सहन करता, मेरे अंदर तुम्हें चढ़ता गुस्सा होता, सारे गुस्सा स्ट्रक था, सारे गुस्सा स्ट्रक था, बेचारा कुछ एक्शन नहीं ले पाते। अंत में जो हिरण्यकश्यप मारने के लिए निकला, बोला तू इतने तुझे बल कहां से मिलता है, इतने बल है तू ना डरता ना मरता हर प्रकार से प्रयास करना तुझे मारने के लिए, तू मर भी नहीं रहा है, मर नहीं रहा तो डर के भाग जाओ, वो भी नहीं कर रहे। कोई हम लोग भी होते हैं कितने पावरफुल, कोई पीछे पड़ जाए हाथ धोकर मारने के लिए, पिता भी स्वयं और सारे अपना ही सोल्जर सब पड़े मारने के लिए भाग नहीं जाए, बाप रे बाप, अरे पीछे क्या पड़ जाए, मैसेज आने से भाग जाएंगे, पहले से पता लगने से भाग जाएंगे। अब प्रहलाद महाराज निडर होकर के जाते, निडर होकर के कितने प्रयास किए, क्या क्या कर, कोई कसर नहीं छोड़े उनको मारने के लिए, सभी में फेलियर। अंत में जब बुलाते थे हिरण्यकश्यप गुस्से में उनको देखने के लिए, कैसे हाउ कैन इट पॉसिबल, प्रहलाद महाराज आपने स्वभाव से कोई आंच नहीं दिए। छोटे बालक 5 साल का जाता था पिता के सभागृह में, जब एंट्री करता था विशाल राजभवन था, उसके सामने बड़े बड़े सैनिक एंट्री थे, जाकर उनको ही प्रणाम करते थे। सैनिक बोलते थे बड़े कुमार, कुमार आप हमको प्रणाम करते हैं, आप दर्शन आपकी दृष्टि से हम पदार्थ हो जाएंगे, लेकिन उनको ही सम्मान करते थे। वो भी मन में सोचते थे ये राजा कैसा है, उनके बटन सही इतने अच्छे लड़का को मारना चाहता है, कितने स्वभाव उनका अच्छा, जैसा रूप था ऐसे गुण था। और उनके पिताजी गुस्से में बिल्कुल रंच होकर के देखता था, वो जाकर के दंडवत प्रणाम करते थे पितृचरण में, क्या करेगा सर, कोई बेटा जाकर के कितने भी क्रोधित पिता के चरण पकड़ करके बिल्कुल दंडवत करे अकपट होकर के, तो क्रोध रहेगा क्या, इतने संभाल करके इतने स्थितियों में क्रोधित हो रहा था, इसलिए छाती उनका कठोर था, इतने कठोर शीर्ण टंग का नखल है, शीर्ण से भी ज्यादा कठोर, इतने कठोर को हो नहीं सकता। तभी भी प्रहलाद महाराज कभी भगवान की हेल्प नहीं चाहते थे ना, आपको बोला क्यों परेशान हूं, मेरा हिसाब से बोल रहा हूं। लेकिन अंत में जब पिताजी वो पूछा हिरण्यकश्यप ने, बोला तू डर भी नहीं रहा है, मर भी नहीं रहा है, कहां से तुझे पावर सप्लाई हो रहा है, मेरे सामने फिर भी स्टैंड किया है, मैं आंख फाड़ कर देख लू देवता लोग का टैलेंट खराब हो जाए, तू कुछ नहीं हो रहा है, डर नहीं रहा है। तो ये प्रश्न जब पूछा प्रहलाद महाराज करे, मुझे उन्हीं से शक्ति प्राप्त, किन से शक्ति प्राप्त होता, कहां पावर हाउस कहां है आपका, बोले जहां से आपको मिल रहा है मुझे सप्लाई तो किया जाता है, पावर हाउस है कि बोले कौन है? बोले हरि। ना हो ही नहीं सकता, बोला उसका जन्म से दुश्मन है, उसे लूंगा क्यों, देने पर भी नहीं लूंगा, एक तो मुझे देगा ही नहीं, अगर देगा भी तब भी ना लूंगा उन्हें, और कुछ उससे आता है। बोले पिताजी केवल आपको नहीं, संसार में जितने बलवान है सभी को बल उन्हीं से मिलता है, बल का स्टोर वहीं उन्हीं के पास है, सब उन्हीं से आता। बोले ना, माने नहीं। बोले अच्छा ठीक है, मुझे तो मैं तो मानता हूं मुझे नहीं मिलता है, तू बोलने से क्या होगा, झूठ बोलता है, लेकिन तुझे मिलता है, कहां से मिलता है, मैं देख नहीं रहे किस प्रकार तुझे दे रहा है शक्ति, तुझे स्ट्रेंथ कहां से मिल रहा है, कहां बैठा तेरे हरि तुझे हेल्प करने के लिए। प्रहलाद महाराज ने बोले मेरे हरि कहां बैठे, सर्वत्र विद्यते, सब जगह में, सब जगह में, मेरे कोर्टयार्ड में है, मेरे सभा भवन में है। बोला है, चारों ओर घूमकर देखा, है तो नहीं, मैं उनको पहचानता हूं, वही नहीं। बोला पता नहीं। बोला ये मेरा सामने उड़ गया था प्रहलाद को मारने के लिए, बोला आज मैंने खुद मेरा हाथ से मारूंगा तुझे, बोले मरवा रहा था आज खुद मार दूंगा। फिर पूछा, बोला तुझे मारने से पहले तुझे जो सप्लायर है उसको पहले मारूंगा फिर तुझे मारूंगा, ये प्रोसेस है। तो पूछा तो कहां है, दिखाई नहीं पड़ता कहां है, तो सामने खंभा था, बोला इस खंभा में, खंभा में है। बोला पिताजी है क्या दृश्य, थे मुझे दिखाई पड़ रहे, बैठे तो है। बस इसी में प्रहलाद जी नाथ खान जब बोले कि मुझे दिखाई पड़ रहे इधर है खंभे में है, तो भगवान बोले मेरे बेटा अभी तो बोला है मैं तो हूं गिर रहूंगा, भगवान सर्वत्र है बिल्कुल, आके बैठ गए खंभे में, हिरण्यकश्यप देखा आंख फाड़ करके, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। बोले पता नहीं मेरे एज हो गया, चश्मा नहीं लगा, बच्चा है उसको दिखा पड़ता होगा, मुझे नहीं दिखा पड़ता शायद। बोला उनको तो दिखाई पड़ ही रहा ना, एक तमाम है ना, है यही बैठे दिखाई पड़ रहा है, वो एक मुक्का मारा उसको, बोला मर जाएगा। उनका बल पर बड़ा भरोसा था, सख्त मुष्टि का घात किया, इतने विशाल स्वभाव भवन के खंभा चूर चूर हो गया, टूट गया, टूट गया। तो भगवान प्रकट हो, भगवान प्रकट हो, प्रहलाद महाराज बोले सर आप क्यों आए, मैं तो बुलाया नहीं था आपको। भगवान बोलते मुझे मालूम है तू नहीं बुलाया था, लेकिन मैं तुझे बुलाने पर थोड़ी आया, किस लिए आया, न सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, मेरे भृत्य तू, मेरे भृत्य है मेरे सेवक, मेरे सेवक के वाणी को सत्य प्रमाणित करने के लिए मैं प्रकट हुआ, तुझे तो बुलाएगा भी नहीं, मैं जानता हूं, तू बोल दिया कि मेरे प्रभु यहां है, इस खंभे में भी है, दिखाई पड़ते मुझे, इस तेरे बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए तेरे बाप के सामने प्रकट हो रहा मैं, बस और कोई कारण नहीं, तुझे मुझे बुलाया नहीं, मालूम है मुझे हल्क तो नहीं लेगा, सत्यम विधा तुम निज भृत्य भाषितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, सभा भवन के स्तंभ से अद्भुत न मृग न मानुष हिरण किसको देख रहा है, कि भाई पढ़ा भी नहीं सुना भी नहीं, चिड़िया हमने कहीं नहीं सर क्रिएचर, ये क्या हो सकता है भाई, आधे मनुष्य है आधे सिंह है, व्हाट इज दिस। भगवान ने चुन करके रूप लिए थे, बोले मनुष्य को मनुष्य को इतने गुस्सा नहीं कर सकता, मेरे कई दिनों से गुस्सा स्टक पड़ा है, सारे क्रोध मुझे प्रकट करवाना है, मनुष्य इतने क्रोध कर ही नहीं सकता, उनका है ही नहीं फेशियल फीचर इतने अद्भुत विकार लाने के लिए। तो सबसे गुस्सा को पकड़ करने में केसरी सिंह, वो भयानक आयाल है, दांत बड़े जबड़ा है, भीषण चक्र, तो वो बिल्कुल बिफिटिंग है गुस्सा भयानक रूप लेने के लिए। बोले सारे गुस्सा प्रकट करूंगा, इसलिए इतने जोर से आवाज के दहाड़े सिंह विक्रम लेकर के प्रकट हुए, इतने भयानक आवाज करके पकड़े कि सृष्टि सारे ऊपर से नीचे तक बोली असमय में प्रलय किसे हो रहा है, अभी तो प्रलय की डेट नहीं आया, अभी से किसी भी फिर डेट में प्रलय हो रहा है, इतने भगवान गुस्से में आए, गुस्से में आए उसको तो उठाकर फाड़ दिए तुरंत, हिरण्यकशिप को ज्यादा खिलवाड़ नहीं फाड़ फूट दिए, बाकी उनके जो सेनापति सब थे आसपास उनको भी मार मुड़ दिए, फिर भी मार करके उनके आंत को इतने गुस्से में थे, भाई कोई माला देने के लिए तो नहीं जाएगा, देवता लोग गए थे लेकिन डर के मेरे पास नहीं आते थे, वो माला नहीं भगवान ही माला के बिना अच्छा नहीं लगेगा, तो आंतड़ी का माला पहन ली, हिरण्यकशिप का आंत को खींच करके रक्त सद्य रक्त युक्त उसी को पहन लिए, अपने स्वयं वाला पहन लिए सेल्फ, और भयानक हो गए। पूरा आंतड़ी का माला, पूरे शरीर में बाल सब, आल बाल सब रक्ताक्त है, भयानक गर्जना, इतने क्रोध तो बोले क्रोध इसलिए पड़े, कई दिनों से स्टक पड़ा था सारे क्रोध। प्रहलाद तो बुला नहीं थे लेकिन बाकी उनको टर्चर कर रहे थे, गुस्सा मार रहे थे, इसलिए क्रोधित हो रहे थे। मारने के बाद भी, फाड़ देने के बाद भी तभी बोले थे गुस्सा हो रहा था, लेकिन जब नजर पड़ा छोटा बेटा प्रहलाद अब माला लेकर के पहनाने के लिए खड़ा है, ऐसे ऐसे ऊंच रहा है पद है ना, छोटे बच्चा ऐसे, वो तो इतने विशाल आसन में बैठे, इतना विशाल रूप है, वो बेचारा हाथ उठा रहा है, पैर उठा रहा है, ओहो हो हो, इस प्रकार के प्रयास छोटे बालक को देख करके करोड़ों करोड़ों पिता का वत्सलता स्नेह अपने बालक को ऐसे अद्भुत प्रकट हुआ। भगवान ने हजार हसाब फेंक फाक करके उठा लिए, नीचे से उठा करके सीधा गले के पास लगे, बोले पहनाओ, लेकिन फिर भी ये विशाल सिंह शरीर है, सिंह मुख है, छोटा सा प्रहलाद 5 साल का बच्चा कैसे पहनाएगा, वो जबरदस्ती हाथ से पहना, पहन लिए आपसे सर उठा करके पहन लिए, उनके हाथ से पहन लिए। भगवान तो बालक प्रहलाद को अपने हाथ से, अपने स्वयं कर कमर से उठा के लिए थे, इतने भी नहीं, उनके हाथ से माला पहनने के बाद इतने वत्सल हो गए, इतने स्नेहसिक्त हो गए, अतिरेक स्नेह ममता आ गया कि बच्चे को लेकर के और आपाद मस्तक चाट गए। सिंह तो जब ज्यादा प्रेम करते पशु तो ही करता ना, पशु चाट ही सकता है, अत्यधिक स्नेह होने से चाटेगा, नहीं तो थोड़े कम होने से सुनेगा, तो वो सब कुछ कर डाले इतने स्नेह। तो अगर कोई निष्काम भक्त हो तो उनके प्रति भगवान का इतने प्रेम उमड़ पड़ता है, लेकिन निष्काम पता नहीं जो भी है, लेकिन गजेंद्र बोलता है कि चलो निष्काम जो उनका काम ही करते हैं, जो सकाम उनका काम ही करते हैं, सबका काम करते हैं, तो मुझे अभी टेंशन में पड़ा हूं, दुखी हूं, तो मेरे काम कीजिए, तो बाकी सबको दिए तो मुझे थोड़ी ना ना देंगे, मुझे देंगे, तो इसलिए श्लोक में उन्होंने बता दिया कि मुझे आशीष है और मैं क्या मांगू, आप सब देने वाले हैं, देते ही हैं, और मैं इतने सारे प्रणाम किया, मुझे तो देंगे, ये आशा तो है, भगवान मुझे मदद करेंगे, मुझे हेल्प करेंगे, ये आशा ही भक्ति का बहुत बड़े अंग है, शरणागति का अंग है, एक अंग है, क्या नाम उसका, अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पालन, ये बहुत बड़े मजबूत सरेंडरशिप है। ऑफ कोर्स कृष्ण विल सेव मी एट एनी कष्ट इन एनी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति में, किसी प्रकार विपद में, किसी प्रकार स्थान काल परिस्थिति में मुझे रक्षा करेंगे, ऐसे दृढ़ विश्वास, कन्फर्म वन फेथ इसे रखना, इसे कहते हैं शरणागति का एक अंग, अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पालन। इस प्रकार के आशा, अब गजेंद्र जब देखा निराशा होकर, आशा तो होना ही चाहिए, वो तो कोई उसके देयर इज नो ऑप्शन ना, नो चॉइस, लेकिन हम लोग चॉइस ऑप्शन ना होते हुए भी फिर भी चॉइस को ढूंढते हैं, फिर भी ऑप्शन देखते हैं, लेकिन गजेंद्र जी ने सौभाग्यशाली है उसको पहले देख लिए, लड़ाई करते बोले ना यही ऑप्शन। तो इसी प्रकार हम कभी कभी विपद में पड़ते, कभी कभी क्यों, हमेशा पड़ते हैं, कभी कभी नहीं, सभी समय विपद ग्रस्त है और पुकारते भी है, लेकिन पुकारते तो आशा क्या करते हैं, गजेंद्र तो कम से कम विमोक्षण मांगा, आप विमोक्षण भी नहीं मांगे, मुख्य भी नहीं मांगेंगे, हम तो इमीडिएट रिलीफ चाहेंगे, हाँ यही हमारा दुर्बुद्धि है। हम जितने भौतिक सांसारिक आसक्त जीव है, एक कहते हैं कि एक बार एक गांव में एक बुढ़िया थी, वो गांव में जितने सारे वृद्धा लोग को जाते हैं जंगल में लकड़ी काट करके और लकड़ी बेच करके अपने रोजी रोटी चलाते हैं, तो वो बुढ़िया भी गई जंगल में, कई विधवा स्त्री जाती थी वो भी गई थी, और प्रतिदिन जाकर के लकड़ी काट करके बाजार में बेच करके जो अपने अपने रोजी रोटी चलाती थी, तो एक दिन उनको लगा कि डेली इतना थोड़ा बहुत कुछ ज्यादा होना चाहिए, ये करना है, आशा तो बहुत है। तो उन्होंने थोड़ा अधिक लकड़ी उस दिन संग्रह कर ली, बड़ा बोझा बना लिया। बड़ा बोझा बना लिया तो अपने से नहीं उठता था, बहुत भारी बोझा बना लिया। तो दूसरे जो उनके साथ में ग्रुप थे उनसे मदद लेकर के उठा करके बड़ी भारी बोझा, मन में बहुत खुश है, आज ज्यादा लकड़ी है, ज्यादा इनकम होगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, आज ये करूंगी, मन में कुछ स्वप्न देखते चलती है। लेकिन इतने भारी बोझा उठा करके चलने में थक गई और लेट हो रहा करके सब जल्दी जल्दी चल रहे हैं, बेचना भी है। तो इसने थक गए कि वो क्रांत शांत हो गए, प्यास लगने लगी तो प्यास नहीं तड़पाने लगी। अब बोला कि वो तो पानी पीना ही पड़ेगा, चलेगा नहीं, बाकी सब जा रहे हैं। तो एक झरना के किनारे देखा तो बोला कि पानी पीना ही पड़ेगा, नहीं तो चला नहीं जा सकता। तो बोझा को उतार करके पेड़ के नीचे चली गई, जा करके पानी पी ली। पानी पी करके आए, उनके साथ में जितने लोग थे वो तो चले गए, लेट हो रहा करे चल गए। और आई अकेली थी, जल्दी से बोझा लेकर जाना थी उसको, लेकिन वो आकर के उठा दे उठ नहीं रहा, बड़े भारी बोझा। और ऐसे भी काम तो नहीं करेगी उसको, कस करके बांधी, बहुत प्रयास के उठाने के लिए। अब शाम होने चली है और उठ नहीं पा रहे, बेचारे दुखी हो गए। दुखी होकर के रोने लगी, रो करके जंगल के अंदर इस निर्जन स्थान में अकेले। आप जब इसी स्थिति में आ जाते तो भगवान याद आते हैं, तो भगवान को याद करके रोने लगी, हे प्रभु आप तो निस्सहाय के सहाय है, आप तो अनाथ के नाथ है, मैं जैसे गरीब विधवा, अब लेट हो रही है, शाम हो जाएगा, मुझे लेकर के बेचना भी है, प्रभु इतने रो रो करके करुण चित्कार की। तो भगवान प्रकट हो गए, भगवान तो सब जगह में है, हो गए प्रकट, हो गए। बोले मैया क्या करना है, बोलो। बेटा तू आ गया, हाँ मैया, हाँ थोड़ा बुझा उठा दो। मैया थोड़ा सोच तो लो, किसको बुलाया तूने, और किसी को नहीं बुलाया, तू मुझे बुलाया, और कोई तेरे भाई मामा काका चाचा पापा ताओ किसी को नहीं बुलाया, कि तू बुझा उठा देंगे तेरा आ करके, वो दूसरे को कर ही नहीं सकते, तू मुझे बुलाया, याद करो तू किसी को बुलाया, ना मैं तो भगवान को बुलाया, तू भगवान को बुलाया, थोड़ा सोच तो लो, और एक चांस देता हूं, थोड़ा सोचो, मेरे से यही चाहता है ना। बेटा उछ लेट हो रहा, आप मेरे से अगर टाइम खराब मत करो, उठाओ हाथ लगाओ, मैं बस बस। तब भी भगवान पीछे खड़े, बोले मैया सोचो तो सही, तो किसको पुकारा यही काम के लिए। बोला बेटा टाइम खराब हो रहा है मेरे से, क्यों जब आया तो सही करो, मेरे दुख तुझे दिख नहीं रहा, इतने दुखी हूं, इसी करके कहो चित्कार कर पुकारा, तू देख नहीं रहा मेरे किसे दुखी हूं, मैं मदद मांगती हूं तेरे सामने। मैया मदद करने के लिए तो मैं आई दौड़ कर आए, तो करता क्यों नहीं, करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझे बुझा उठा दो बस। भगवान बोला हद हो गया, मैं क्या कर सकता, मैं तो कुछ भी कर सकता था, अनंत कोटि जन्म तक उस कष्ट से निवार दे सकता था, बुझा लकड़ी काटना नहीं पड़ता था, तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन ये जीव तो हद हो गया, बार बार पूछने पर भी बोलते मुझे टेंशन दे दो, बुझा दे दो मेरे सामने। भगवान बोले मैं क्या कर सकता हूं, तो बुढ़िया ने जबरदस्ती बोला, गुस्सा करके बुझा उठा दो। भगवान बोले ठीक है, बुझा उठा दो सर, हम सभी बोलेंगे बुढ़िया को तो बुझे नहीं, हम सभी वही बुद्धि, सभी भगवान को बोलते हैं, भगवान अगर सामने कभी आ भी जाए, पहचान तो नहीं सकते, कभी आ जाए क्या मदद करो, बस मेरा केस में थोड़ा ये तलब लगा दीजिए, फैसला हो जाए, मेरे बेटा को थोड़ा शादी करवा दीजिए, उनको नौकरी दिला दीजिए, दूसरे दिन से फिर तकलीफ, दूसरे घंटा से शुरू हो जाए, है ना। तो हम लोग ऐसे दुर्बुद्धि है, इसलिए कहा गया कि भगवान आ जाए उनके सामने कुछ मांगना नहीं, अगर मांगेंगे हमको मांगना तो आता नहीं, हम ना अतीत जानते हैं, ना भविष्य जानते हैं, ना वर्तमान, कुछ भी नहीं जानते, तो हम जो मांगेंगे सब गड़बड़ हो जाए। थोड़ा सोचिए कोई छोटे बच्चा हो, उनका सोच विचार कितने तक होगा, बहुत कम होगा। वो अगर मांगेगा पिताजी से खूब बढ़िया मांगे, कितना क्या मांग सकता है ना, 50 रुपया वाला, बहुत ज्यादा है 100 रुपया को मांग ले, 100 रुपया मांग गया मेरे पिताजी, और तू ना मांगे पिताजी तो तुझे लाख हजार दे दे, लेकिन तू मांग कर खराब कर ले, तो इसलिए मांगना नहीं चाहिए। हमको मांगना नहीं आता ना, इसलिए मांगना नहीं चाहिए। हमारे गोस्वामी लोग तो मत मांगो, केवल आशा करके रहो, होपलेस मत हो, होपफुल रहो कि वो तो मुझे देंगे। मेरे दुख, मेरे दर्द, मेरा कष्ट उनको तो पता चलता है, इसे नहीं कि नहीं जानते हो, वो देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, अवश्य करेंगे, समय आने पर करेंगे। हमारा प्यास कितने तेज होता है इसके हिसाब से ट्रीटमेंट करो, हमें थोड़े से हाथ देखेंगे चल जाएगा, तो फिर वो इसे नहीं करते ना। भगवान पार्टनरशिप पसंद नहीं करते, और किसी का मदद लेगा थोड़ा थोड़ा मेरा ले लेगा, ऐसे नहीं। हम जब आते राधिका रमन के सामने प्रणाम करते हैं, बोले राधिका रमन जी मेरा काम कर दो, ऐसे तो मेरा हो ही रहा है, हो रहा है, थोड़ा बहुत आपको मदद चाहिए। भगवान बोलते यही तो मैं नहीं करता हूं, थोड़ा बहुत हम नहीं करते, हम करते तो पूरा करते हैं। हाँ तुझे थोड़ा बहुत चाहिए तुम अब करो किससे मुझसे मेरा बस क्यों, हमेशा हम ही गड़बड़ करते। और किसी के ऊपर भरोसा रखते हैं, आशा रखते हैं, आते बोलते बस, अगर बोलो बस हम नहीं करते हैं, हम तो बस करते हैं। तो पूर्ण शरणागति, पूर्ण शरणागति का एक अंग है पूर्ण आशा, पूर्ण भरोसा करके रहना कि अवश्य वो करेंगे, इतने प्रगाढ़ विश्वास कि अवश्य ही करेंगे, तो भगवान को करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। हमारे आचार्य लोग हमको सिखाते हैं कि कितने हद तक आशा करना चाहिए, किस भरोसे में कैसे आशा करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी के एक भजन है जिनमें उन्होंने ये बात को पुष्टि करते हैं, तो एक भजन में गाते हैं, कृष्ण देव भवंतं वंदे, कृष्ण देव भवंतं वंदे, मन मानस मधुकर मर्पय निज पद पंकज मकरंदे, कृष्ण देव भवंतं वंदे। हे कृष्ण, हे देव, आप ही मेरा देव, आप ही मेरे पालक पोषक सब बन जाइए, देव भवंतम बंदे, आप ही मेरे देव बनिए। किस लिए? न मन मानस मधुकर मर्पय निज पद पंकज मकरंदे, मेरा मन रूपी भ्रमर, मधुकर मतलब बम्बल भी, मेरा मानस मधुकर, मेरा मन रूपी भ्रमर, भ्रमर हमेशा क्या चाहता है, मधुमक्खी क्या चाहता है, मधु चाहता है। मेरा मन मन मानस मधुकर मर्पय निज पद पंकज, आपके चरण पंकज को अर्पण कर दीजिए, मेरा मानस मधुमक्खी उसी के अंदर जाकर के प्रवेश करके शहद लेना चाहता, रस लेना चाहता है, सीधा मान करता है। भगवान मानो बोलेंगे, अरे तेरे इतने साहस है, सीधा सीधा मुझे मानता है कि तुम्हारे चरण पंकज, चरण कमल में, चरण कमल के जो सुधा है, मेरे मन रूपी भ्रमर सीधा जाकर उसी को उस रस को पान करे, आप प्लीज अलाव कर दीजिए। मन मानस मधुकर मर्पय निज पद पंकज मकरंद, तो इस बात को मानो सुन करके कहते हैं कि आप बोलते हैं कि इतने बड़े साहस क्यों, मैं करता हूं। बोलते हैं, यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्रमरीचि, यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्रमरीचि, इदमिच्छामि निशम्यत वाच्युत, इदमिच्छामि निशम्यत वाच्युत, तदपि कृपाद्भुत वीचिम, तदपि कृपाद्भुत वीचिम। क्या कहते हैं? बोलते यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति, विधि कहते हैं ब्रह्मा को, जो विधि विधान लिखने वाला, बोले यद्यपि यदि ब्रह्मा जी जो आपके पुत्र, आपके शिष्य, आपके छात्र, साक्षात विधान करता, सृष्टि करता ब्रह्मा भी, यद्यपि विधिरपि समाधिषु, ब्रह्मा जी आपने ध्यान में कमल में बैठ करके समाधि लगा ली, यद्यपि समाधिषु विधिर अपि अपश्यति, वो नहीं देख पाते हैं, क्या नहीं देख पाते हैं, यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति नतव नखाग्र मरीचिम। बोलते हैं आपको तो देख नहीं पाते हैं ध्यान समाधि लगा करके, कौन ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ध्यान लगा करके हजारों साल समाधि लगा करके आपको तो देख नहीं पाते हैं, आपके चरण कमल ना उसको भी देख नहीं पाते हैं, चरण के अग्रभाग अंगुली को ना अंगुली को भी नहीं देख पाते हैं, बोले अंगुली के अग्रभाग के नख को, बोले नख को भी देख नहीं सकते हैं, नख के अग्रभाग के भी नहीं, नख के अग्रभाग से जो लाइट थोड़ा ज्योति निकल रहा है उसको भी नहीं देखने के समर्थ हो पाते हैं। मरीची मतलब जो लाइट निकल, यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचिम इदमिच्छामि निशाम्यतवाच्युत। मैं इच्छा तो करता हूं, इदम इच्छामि आप इच्छा करता है, ब्रह्मा जी तेरे बाप के बाप के बाप के क्या कितने करोड़ों हिसाब स्क्वायर लगा लो, वो समाधि योग में आपने शक्ति सामर्थ्य बल में असमर्थ नहीं देख पाते ऐसा करते हो, इदम इच्छामि तुम इच्छा करते हो, इदम इच्छामि निशम्यतवाच्युत तुम कैसे इच्छा करते हो। मैं इसलिए इच्छा करता हूं कि मैं सुना हूं, मैं क्लास में आता हूं, मैं क्लास में आती हूं इसलिए मैं इच्छा करता हूं, जो क्लास में नहीं आते उनका भक्ति के अंग पुष्ट नहीं हो सकता। तो ये रूप गोस्वामी कहते हैं इदम इच्छामि निशम्यतवाच्युत, निशम्य मतलब अच्छी प्रकार से श्रवण करना है ना, नितराम श्रवणम, हमेशा मैं श्रवण करती रहती हूं, श्रवण करता रहता हूं, तो इसलिए अच्छे तरह से श्रवण किया हूं तो इसलिए मैं चाहता हूं। इदम इच्छामि निशम्य तवाच्युत, हे अच्युत मैं आपके बारे में सुना हूं, अच्युत मतलब इनफेलिबल, जो कभी हाँ अपने स्थिति से हमेशा जो रहने वाले। इदम इच्छामि निशम्य तवाच्युत, क्या सुनकर रखा है भाई मेरे बारे में ना, तदपि कृपाधित बीचिम, आपके अद्भुत कृपा के तरंग को मैंने सुना हूं, आपके कृपा के समुद्र है, समुद्र में तो तरंग उठता है, बोलते आपके कृपा समुद्र में तरंग उठता है, बीची मतलब तरंग, आपके कृपा समुद्र में जो तरंग उठता है वो अद्भुत तरंग को मैंने सुना हूं कि कैसे अदभ्र दयालु आपने हैं। ये जो शब्द आया क्या दया, कोई हिसाब नहीं कर सकता, आशा कल्पनातीत दया है आपका, इस अदभ्र दया, तो इसलिए इस प्रकार है अच्युत आपके दया के बारे में, आपकी कृपा के समुद्र के अद्भुत ज्वार भट्टा के बारे में मैंने सुना हूं, आपकी कृपा क्या नहीं कर सकता, इसलिए मैं आशा करता हूं भले ब्रह्मा न कर पाए मैं तो करता हूं इदम इच्छा। अच्छा सेकंड में कहते हैं भक्तिरुदंचति यद्यपि माधव न तई मम तिल मात्री, भक्तिरुदंचति यद्यपि माधव न तई मम तिल मात्री परमेश्वरता तदपित बाधित, परमेश्वरता तदपित बाधित दुर्घट घटन विधात्री, दुर्घट घटन विधात्री। बोलते हैं कि भक्ति रुदन चति यद्यपि माधव, हे माधव मैं मानता हूं कि यद्यपि मेरे हृदय में आपके श्री चरण कमल के प्रति रंच मात्र भी भक्ति नहीं, तिल मात्र, तिल समझते ना शिशमिश छोटी से होता, बोले इतने बराबर की भक्ति मेरे हृदय में आपके प्रति नहीं है, मैं मानता हूं अनुष्ठ भक्ति रुदन चति यद्यपि माधव न तो ही ममा तिल मात्री, तुम्हारे लिए मेरे अंदर तो भक्ति तो इतने तक भी शिशमिश तिल मात्र भी नहीं है। परमेश्वरता तदपि तवाधिक, लेकिन हद हो गया मेरे अंदर तो रंच मात्र भक्ति नहीं है, मैं इतने डिस्क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड हूं, लेकिन आप परमेश्वरता आपकी जो परम ईश्वरता है तदपित बाधित ये सबको बाधित कर देता है, दुर्घट घटन विधात्री जो दुर्घट है जो असंभव है उसको भी संभव कर सकता है, आपके परमेश्वरता का ये प्रभाव है, ही पराक्रम है, इसलिए हे प्रभु आपके इस यथादृश कृपा के बारे में सुन रखा हूं, इसलिए मैं आशा करता हूं भले ब्रह्मा ना करके, मैं तो चाहिए मैं सुना केवल सुन करके इतने बड़े आशा किए तो भगवान को आशा पूरा करना पड़ेगा, तो सुना। लेकिन अब सुनेंगे नहीं तो कैसे आपका आशा पूरा होगा, है ना। तो इसलिए गोस्वामी चरण कहते हैं कि कोई विधि पूर्वक केवल इसी बात को सुन करके भगवान यही आशा रखे कि अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास, अवश्य करेंगे। यही बात को सुन लिए कोई एक ही लाइन, अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास पालन, ये विश्वास को जोरदार कोई समझ ले, फिर किसी का डर है उसका? कोई ऐसा परिस्थिति है, कोई ऐसे शत्रु है, कोई ऐसे विपद, कोई ऐसे स्थान काल पात्र कुछ हो सकता है जिसे भगवान ना कर सके? असंभव है। दुर्घट घटन विधात्री, अत्यंत दुर्घट को जो कदाई संभव नहीं हो सकता उसको देखते देखते कैसे संभव कर देंगे, कोई समझ में नहीं पाएगा, कल्पना से बाहर की बात है। इस प्रकार की अद्भुत दया, अधपर दया, इसी को मैं सुनकर आशा करता हूं कि मैं नालायक हूं, भक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर मेरे मन रूपी भ्रमर, मेरे मन रूपी मधुकर आपके श्री चरण कमल की सुधा को पान करना चाहता है, प्लीज अलग बात होगा, सीधा मांग करता जा करके। ये मांग करने के जो जो हाथ में कि साहस कहां से लिया, किस बल पर, मतलब बल पर सुन रखा हूं, इसी के बल पर सुन रखा हूं। क्या सुन रखा है? ना आपकी कृपा के बारे में, आपकी कृपा ही ऐसा है, सुन चुका तो फिर करना पड़ेगा, तो भगवान को बेंडा होना पड़ता है, कोई ऐसी दलील पेश करता। तो हमारे पास तो और कुछ दूसरा ऑप्शन है ही नहीं है, कुछ ऑप्शन? इतने बढ़िया ऑप्शन छोड़कर वो कहां जाए? भले हम कैसे भी हूं, हुड़बा कड़ी नारी कैसे मेरे गरे हूं, लेकिन केवल यही है कि आशा करने में तो हम उस्ताद है ना, तो ऐसा आशा क्यों नहीं करते? केवल यही आशा मात्र करने से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। हरे कृष्ण। Yes. लास्ट अंजन अयम विलोलित नित्य सनातन, वो आप नित्य सनातन हैं, अमृत देने वाले हैं, तो आप देंगे ही, वही बात कहते हैं। मैं आशा तो करता हूं इसलिए कि आप मुझे फर्स्ट टाइम देंगे, आप देते ही रहते हैं नित्य सनातन, आप रस आप रस देने वाले हैं, दिए हैं, हिस्ट्री बहुत पड़ा है, तो मुझे देंगे क्यों नहीं। कलिता अद्भुत रसभार, रसभार से भरे हुए हैं, तो नित्य सनातन से देते हैं, तो मुझे देते हैं, है ना। यस
धन्यवाद। अरे जैसे आज के पर्पट में और आपने एक्सप्लेन भी किया, ध्रुव महाराज ने तपस्या के भगवान को प्राप्त किया और भगवान ने उनको शुद्ध कर दिया, भगवान के दर्शन से वो शुद्ध हो गए। पर भागवत में ऐसे प्रसंग भी आते हैं जैसे दक्ष का, उसने भी इच्छा के साथ में भगवान के लिए वर्षिप किया, भगवान प्रकट हुए, पर वो शुद्ध नहीं हो पाया।
अब देखिए ध्रुव को भगवान ने शुद्ध नहीं किया, ध्रुव जी ने अपने आप शुद्ध हो चुके थे, भजन की तपस्या के प्रभाव से शुद्ध हो चुके थे। शुद्ध नहीं हो तो भगवान नहीं आसेंगे शुद्ध के पास। भगवान ने ज्ञान दिए, वो कुछ बोलना चाह रहे थे, बोले पढ़ लिख के मैं स्तुति करूंगा, तो ये वैदिक ज्ञान को भर दिए, वैदिक ज्ञान का एसेंस को भर दिए, सूचन करके संत स्पर्श करके। ओके, आपकी उपस्थिति दक्ष के
दक्ष को भगवान ने दर्शन दिए, पर दक्ष शायद मतलब ऐसा जो उनका आचरण लगता है उससे ऐसा लगता नहीं कि वो पूर्ण रूप से शुद्ध हुए और बाद में फिर उन्हें
करेक्ट किया। दक्ष ने भी ध्रुव महाराज से 5 साल, दक्ष ने 4 कल्प तपस्या किया, 4 मन्वंतर, 4 मन्वंतर तपस्या किया, भगवान उनके सामने प्रकट हुए, लेकिन फिर भी क्यों नहीं उनको शुद्ध कर पाए? अब ना तो भजन उनको शुद्ध कर पाया, न भगवान के दर्शन उनको शुद्ध कर पाया, क्योंकि वैष्णव अपराध का जड़ रह गया था। वैष्णव अपराध इतने खतरनाक है, 5 मन्वंतर तप करके भगवान के साक्षात दर्शन करके भी नहीं मिटता, तो इसलिए उसको डर के रहना चाहिए। ओके, भगवान शंकर के चरण अपराध किया था ना, इसका तो बच गया।
कि जो माया है वो भी हमारे मन को पूरे अच्छे से पढ़ती है ना, कि हम क्या जानते हैं, और ऐसे भगवान भी है जो कि आज के श्लोक में धर्म कर्म आर्ट सब कुछ देने वाले हैं, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें? कई बार क्या होता है अचानक हम कुछ इच्छा करते हैं, वो पूरी हो जाती है
दोनों। भगवान बोलते हैं मम माया, ये माया किसका है? उनका ही तो है, उनके शक्ति रखता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? यही तो है, आपके पता नहीं चलता माया के लिए कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। इतना नहीं कर पाएंगे तो फिर तो क्या ना भगवान के, भगवान का नाम गाम तो आना चाहिए ना। माया के लिए भगवान को छोड़ करके जो आशा है माया का है, भगवान को पकड़ने से माया नहीं आ सकता। असम आप भगवान को साथ लेंगे माया शर्म करेगी नहीं आएगी, भाग जाएगी। भगवान जब माइनस है नहीं है तब माया आती है, ये डिफरेंस। ओके महाप्रसाद, लेकिन महाप्रसाद भोगने की इच्छा कर तो भगवान नहीं रहते हैं, है ना? महाप्रसाद सेवन इच्छा की। ओके क्योंकि माया और कृष्ण के दूर हैं, अपने अगल बगल में खड़े हैं, है ना? एक ने मुझे बता रहे थे कि उनके मंदिर से बम्बे के महाराष्ट्र की बात है, वहां बहुत बढ़िया खीर बनाते हैं और रात को खीर भोग लगता है और सुबह फ्रीज में रखते हैं, सुबह सुबह उस क्लास के बाद बांटते हैं। आप कहते बांटते हैं सर? जो बांटते हैं तो हाई क्लास का खीर बांटा जाता है, लेकिन वो कई दिन से देखा गया फ्रीज से खीर गायब हो जाता है, चोरी हो, चोरी हुआ पता लगाते लगाते कई महीना बीत गया, पकड़े ना आगे बोली चोरी होता है, कौन लेता है? पुजारी में से बोलते हैं हम ताला लगाते हैं, ताला किसके पास? सभी को बहुत मुश्किल से कैमरा लगा करके, लेकिन आजकल एक्सपर्ट है कैमरा को भी सेट कर देते हैं तो, लेकिन बहुत मुश्किल से एक बार एक पकड़ा गया, वो एक ब्रह्मचारी था वो पुजारी था, अब दूसरा तो कोई आ ही नहीं सकते, वो ले रहा था उसको पकड़ करके वो काउंसिल मीटिंग में सामने लगे, उधर कई महीना से ले रहा था। तो उन्होंने अपना सफाई दिया, बोले देखो महाप्रसाद तो चोरी कर खाया जा सकता है, महाप्रसाद प्रति अट्रैक्शन तो बढ़ाना चाहिए, तो भगवान की तदीय वस्तु है, भगवान की तदीय वस्तु है, उनके प्रति मेरा उत्साह लालसा बढ़ा है तो उसमें कभी क्या है? आप भक्ति रसाम सिंधु का अनुसार उन्होंने तो ऐसा वकालत किया तो बोला कि इसमें गलती क्या, महाप्रसाद छिपे छुपे चोरी छिपे ले खाया जा सकता है। तो फिर जो विचारक बैठे थे काम से बोले बहुत अच्छा, क्या भक्ति शाम पढ़े लेकिन किए भक्ति शास्त्र किए आपने उदाहरण दिए, लेकिन भक्ति सुखाम सिंह प्रसाद के प्रति केवल खीर प्रसाद प्रति, करेला प्रसाद प्रति कभी नहीं कभी करेला भजी होता है उसके प्रति भी चुन करके खा जाए, नहीं केवल चुन करके केवल खीर, ये इसलिए पड़ेगा चुन करके वो भी तो महाप्रसाद है ना। तो कौन सा महाप्रसाद आप लेना चाहते हैं? अरे कृष्ण।